नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये पोर्टल नागरिक अनुकूल डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध की संभावित समाप्ति के लिए तत्काल और सीधी बातचीत शुरू करेंगे। दीव में रंगारंग समारोह के साथ पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बताया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि भारत ओसीआई कार्ड धारकों को विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज सिटीजन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ एक नया ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। श्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर के कई देशों में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत आने या यहाँ रहने के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय के अनुसार मौजूदा ओसीआई सेवा पोर्टल 2013 में विकसित किया गया था और वर्तमान में ये विदेशों में 180 से अधिक भारतीय मिशनों के साथ साथ 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों में चल रहा है। पिछले दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओसीआई कार्ड धारकों से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए मौजूदा बाधाओं को दूर करने और इसे सुगम बनाने के लिए एक नया ओसीआई पोर्टल विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए ओसीआई पोर्टल की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्नत सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया ओसीआई पोर्टल नागरिक अनुकूल डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें मुंबई स्थित राजभवन में सुबह 10 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया है। राज्य की राजनीतिक हलचलों में यह एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। उन्हें प्रशासन का व्यापक अनुभव है। भुजबल को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय दिया जा सकता है। यह विभाग पहले भी उनके पास था। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुछ नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकतंत्र के अस्तित्व और विकास के लिए एक मजबूत न्यायिक प्रणाली आवश्यक है। नई दिल्ली में कल शाम एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में जांच कार्य कार्यपालिका के दायरे में आता है और उस पर निर्णय लेना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। समारोह के दौरान श्री धनखड़ ने द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड नामक पुस्तक का विमोचन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में हेग पहुंचे। वहां उन्होंने नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर व्यापक चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड विलियम लुटनिक के साथ सकारात्मक चर्चा की है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस साल अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने से पहले वस्तुओं में अंतरिम व्यापार व्यवस्था की संभावना तलाश रहे हैं। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा इस्लामी आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं को भारत को सौंपने का सही समय आ गया है। इसराइल के टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये आतंकी संगठन भारत पर कई हमलों में शामिल रहे हैं, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ जघन्य हमला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे जैश ए मोहम्मद और उसके नेता मसूद अजहर तथा लश्कर ए तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद हैं।
The two main groups which are involved in cross-border terrorism from Pakistan are Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. And they have been creating problem over the past 2-3 decades to us. The ceasefire is still holding on, but we have made it very clear that this Operation Sindoor, it's paused, it's not yet over. So our fight against terrorism will continue.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण कर रहे हैं।
जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी, जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को हैदराबाद में पुनर्विकसित बेगमपेट रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये भारत में 103 अमृत भारत स्टेशनों के उद्घाटन का हिस्सा है। इस स्टेशन को आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री रविवार 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने कहा कि मुंबई में भी कल से मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तरी भागों में गर्मी के तेज होने की भी कोई संभावना नहीं है।
Today we have updated the orange color warning for Karnataka, particularly for 20 and 21. Also, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra are likely to get very heavy to extremely heavy on 29th or 21 to 22nd. Bombay will also receive moderate to heavy rainfall from 21st onward. So this is the rainfall scenario. If we talk about North India regarding heat wave, there is nothing, no chance of a heat wave intensifying.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन से वार्ता सकारात्मक रही और दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं।
My little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin. Actually, we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average, and we're trying to stop it. It's a bloodbath.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पुष्टि की है कि रूस संभावित शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन रूस के साथ तुर्की, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में शांति वार्ता करने को तैयार है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कल शाम दीव में घोगला बीच पर शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक भव्य समारोह में इस खेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक खेल महाशक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
दोस्तों, विकसित भारत यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब स्पोर्ट्स में देश 1 से 5 क्रम में हो, इस लक्ष्य के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं।
इन खेलों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,350 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स को देश के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण बताया है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर कतर के दोहा में कल भारत की दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2025 में महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इस बीच अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी 3-0 से हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। आज दूसरे दौर में मानिका बत्रा का सामना दक्षिण कोरिया की गा हेओन पार्क से होगा। पुरुष सिंगल्स में मानव ठक्कर का सामना जापान के तोमा काजू हरिमोटो से होगा। इसके अलावा जूनियर विश्व कप तीरंदाजी 2025 प्रतियोगिता कल जर्मनी के सुहल में शुरू हुई। भारत की रायजा ढिल्लो की अगुवाई में 57 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहत। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ऑपरेशन सिंधु द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की त्वरित कार्रवाई पर आज सभी समाचार पत्रों ने खबर प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, स्वर्ण मंदिर था पाक के निशाने पर, सेना ने बताया कैसे वायु रक्षा प्रणाली के बलबूते ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया। हरिभूमि की सुर्खी है, सेना ने यूं नाकाम की स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन से हमले की कोशिश। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के शब्दों को सभी समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। पत्र लिखते हैं, पहलगाम हमले के वक्त पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे आतंकी। नई E0 प्राथमिकी से साइबर अपराधियों को जल्दी पकड़ने में मिलेगी मदद। भारत की सिलिकॉन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की तस्वीर दैनिक जागरण ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, बेंगलुरु में बारिश का कहर, सड़कों पर चली नाव। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा जश्न शीर्षक से सकारात्मक खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, CBSE बोर्ड परीक्षा में आए कम अंक, मायूस बेटे के साथ खड़ा हुआ पूरा परिवार, अवसाद से बेटे को निकालने के लिए बजवाए ढोल।
धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दीव में रंगारंग समारोह के साथ पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।